ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्ची, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। क्या बन गए हो आप? बेगर। यदि कुछ है तो आप बेगर नहीं हो। इसलिए इस देह भान, देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। ये देह भी तुम्हारा नहीं है और तो कुछ दुनिया में है ही नहीं आपका। ये देह भी तुम्हारा नहीं है क्योंकि आप आत्मा ने अपने घर वापस जाना। जो सच है उस सच में स्थित हो जाओ तो आप बैगर से प्रिंस बन जाएंगे। इस सच की स्थिति में, इस अवस्था में रहो, इस सच्चाई की स्मृति के साथ रहो कि हम आत्मा है, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं। फिर मैं सारा दिन ये यूज क्यों करता हूं? आप जिसके मालिक नहीं भी हो, आपने उस समय जिस चीज को यूज करना है उसे यूज करने से कोई रोक नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और नहीं यूज करना है तो कोई दुनिया की ताकत आपको दे नहीं सकती। आप कितने अमीर हैं, कितनी जगहों के मालिक हैं, परंतु आप उन जगहों को यूज नहीं कर सकते। दूसरा ही जिसने यूज करना है वो करेगा। आप वहीं रहेंगे जहां आपका पार्ट है। कारण कुछ भी बने, कारण कुछ भी बने, ये हम सभी जानते हैं। और इस ज्ञान को, इस जानने को हमने अपनी बुद्धि के में, बुद्धि के द्वारा समझकर चलना है। मैंने बताया था कितने करोड़ रुपए के मरले कौन रहते हैं वहां पर? मालिक तो साल में 10-15 दिन महीने के लिए आते रहने के लिए, चौकीदार रहते हैं, नौकर रहते हैं और उनको खाने पीने के लिए पैसे मालिक देते हैं। उनकी हैसियत ही नहीं कि वो सपना देख सके इतने बड़े विला का। वो सिर्फ उसको संभाल के रखते हैं कि हमारा मालिक कभी आएंगे रहने के लिए। कौन रहता है वहां? सोचना है, मतलब उनकी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम ऐसा कोई विला जो है ना ले सके। अब जिसका है उसके लिए क्या है? वो उसके लिए सिर्फ 15 दिन 10 दिन, कभी 6 महीने में, कभी 2 महीने में आए, 10-15 दिन वहां रहे और उसके बाद चले गए। उन्होंने सारी साफ सफाई करके रखना है और चाहे वो सोएंगे अपने कमरे में, उनका सर्वेंट क्वार्टर अलग से मिला हुआ है, पर तो सारा दिन तो उसी कमरे को सफाई करनी है, वही रहना है, वही करना है। तो जिसने जहां रहना है ना उसने वहां रहना है। मेरा मेरा करते रहो। प्रश्न, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्याल समाप्त कर देती है? जिसको ड्रामा की यथार्थ एक्यूरेट सच्चा ज्ञान समझ में आ गया है उसके कौन से विचार खत्म, उनके कौन से विचार नहीं चलेंगे? ये बीमारी क्यों आई, क्यों आई? रोल है भाई, मेरा भी रोल है और बीमारी का भी रोल है। क्यों का क्या मतलब हुआ? ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. پھر ایسے سوچتے کیوں آپ؟ ڈراما میں یہ سنکلپ آنا بھی کیا ہے؟ نشچت ہے نا. اور آپ ویسا کریں گے جیسا آپ نے کیا اور جو ہونا تھا وہ ہوا. اب ورتمان کو کیوں میں برباد کروں؟ اب ورتمان میں میں وہ سوچ کر کے ورتمان کا بیڑا گرک کیوں کروں؟ میرے کو بھاگیہ لکھنے کا سمے ملا ہے ورتمان, اور میں اس میں بھوت کال کی باتوں کو سوچ کر رو رہا ہوں, یا بھوت کال کی باتوں کو سوچ کر بڑا خوش ہو رہا ہوں. تو ورتمان میں جو کرنا تھا وہ تو نہیں کر سکا نا. جتنی دیر تک میں بھوت کال میں الجھا رہا, میں ورتمان میں جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے ورتمان کا بیڑا گرک کر دیا. یہ وگن کیوں پڑا؟ یہ مصیبت ٹل سکتی تھی, یہ بندھن کیوں آیا؟ میں نے کب کون سا ایسا کرم کیا؟ میں نے تو کچھ کیا نہیں. یہ سب خیالات ڈراما کی یتھارتھ نالج ختم کر دی. جس کو سچا سمجھ میں آ گیا کہ ڈراما ایکیوریٹ ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رائٹ ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, کلیانکاری ہو رہا ہے, چاہے وہ دکھ کا ہے تو چاہے وہ سکھ کا ہے, مجھے اب کوئی سنکلپ چلانے کی ضرورت نہیں. جیسے پرم پتا پرماتما کو دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی سنکلپ نہیں چلاتے, ہمیشہ کہاں رہتے ہیں؟ پرم اوستھا میں. پرم اوستھا میں جہاں کوئی سنکلپ نہیں. پرماتما کہتے میں یہاں تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہوا ہوں تو بھی میں کوئی سنکلپ نہیں چلاتا کہ میں نے تمہیں کیا بتانا ہے کیا کرنا ہے. اس برہما کو سنکلپ چلانے پڑتے ہیں, تمہیں سنکلپ چلانے پڑتے ہیں, مجھے کوئی سنکلپ چلانا نہیں پڑتا. میں ایکیوریٹ ٹائم پر ایکیوریٹ ہی بولتا ہوں. کیوں کیوں ایکیوریٹ بولتا ہے وہ؟ اس سے غلطی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس نے اپنے گیان کو کبھی چھائے نہیں ہونے دیا. اس شریر کو یوز کر کے ہم نے اپنے گن اور شکتیوں کو کھے کیا ہے. پرماتما اس شریر کو یوز کرتے ہوئے اپنے گن اور شکتیوں کو کھے نہیں کرتا. پانچوں تتوں کا پرماتما پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا, کیونکہ ڈراما انوسار جو ہونا تھا وہی ہوا, اور ہر کلپ کلپ پہلے موافق ہوتا ہے. ہر کلپ وہی ہوتا ہے, ہر کلپ وہی ہوتا ہے. پرانا شریر ہے, اسے چتیاں بھی لگانی ہی ہیں. شریر کو چتیاں کیسے لگاتے ہیں؟ دوائی گولی کھا کے چتیاں تھوڑا لگائی جاتی ہیں. ہاں, چیر پھاڑ ہوتی ہے, کاٹ پیٹ کر کے, کوئی آرگن خراب ہو گیا اس کو باہر نکال کے پھینک دو, پھر ٹاکی ٹوکے لگا کر کے اس کو چلاؤ. چتیاں بھی لگنی ہیں, اس لیے کوئی خیالات چل نہیں سکتا. کیونکہ جتنا سمے مجھے اس سنسار میں پاٹ بجانا ہے, چاہے چتیاں لگا کر تو چاہے لال پیلی نیلی ہری گولیاں کھا کر ٹافیاں کھا کر, یعنی کیا کرنا ہے؟ ہاں, خوش ہونا ہے. اسپیشل دکانیں کھلی ہوئی ہیں جی, جا کے ٹافیاں خرید کے لے آؤ اور کھاؤ. جتنا سمے چلنا چلیں گی, حساب کتاب برابر کرنا ہے بھائی. گیت, ہمیں ان راہوں پر چلنا ہے جہاں چڑھنا اور سنبھلنا ہے. دنیا والے کہتے ہیں گرنا اور سنبھلنا ہے. اوم شانتی. ان راہوں پر چلنا ہے, کون سی راہیں؟ کون سی راہیں؟ राह कौन बताता है कि इन राहों पर चलना है? बच्चे जानते हैं हम किसकी राय पर चल रहे हैं। राय कहो, राह कहो, वा श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमत भगवत गीता, श्रीमत भगवत गीता। तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहां याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हैं। यहां ये तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे, ऐसे तो नहीं कि जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, जन्मते ही ब्रह्मा बन जाएंगे। पहले बच्चे के रूप में जन्म लेंगे ना, जो भी संसार में आएगा वो एकदम ब्रह्मा की तरह पेट में से कमल के फूल में से निकलकर ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, या पैदा होते ही एकदम लक्ष्मी नारायण बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनका बचपन कहाँ गया, उनके माता पिता कौन है, ना जानने के कारण ही उनको भगवान कह दिया। ये बात ना जानने के कारण ही लक्ष्मी नारायण को भगवान कह दिया, क्योंकि उसका तो कोई माता पिता है नहीं, वो कभी बच्चा होता नहीं, कभी बुढ़ा होता नहीं, वो एकदम जवान ही रहते हैं, वो कभी भी मतलब खत्म ही नहीं होते। वो तो भगवान है, राम है, वो राम ही रहता है, बस बुढ़ा होता ही नहीं है। फिर शरीर छोड़ के चला क्यों गया? शरीर नदी में क्यों डूब गया? फिर वो कहां चला गया? है तो फिर सामने आवे, बैठे हों, दिखाई देवे, जहां जी देखो हम एवरग्रीन है, चमन प्राश बनाया चमन ऋषि ने कि बुढ़ापे में वो जवान हो गया, आज तक उसके चक्कर में सारी दुनिया चमन प्राश खा खा के यानी सोच रही है कि बस हम भी जवान हो जाएंगे। पर तो वो चमन, खुद चमन ऋषि मर गया तो बाकी आगे वाले क्या बनेंगे? ठीक है, दवाई के रूप में कोई भी चीज डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, टाफियां खा लो, दवाइयां खा लो। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है, वो आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहां याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, उनको कहां किया जाता है? वैकुंठ में। और वैकुंठ में सारे सुखी होते हैं, किसी के जीवन में कोई दुख है ही नहीं। फिर मन मना भव वो कैसे कहेगा कि तुम बैठ के अपने मन को मनाओ? क्या मनाए मन को? हम सारे सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, यथार्थ ज्ञान के आधार पर हमारा हर एक्ट हो रहा है, हमारी दृष्टि वृत्ति बोल कर्म सारा बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा है, पर तो वो बाबा को जानते नहीं, एक्यूरेट है, तो फिर क्या मन मना भाव करे? कोई गलती हो, कोई हमारी गलती बताए, तो हम अपनी गलती को ठीक करने के लिए बैठकर सोचे, वहां कोई गलती ही नहीं हो रही। श्री कृष्ण नहीं कह सकते कि मन मना भाव, मध्याजी भाव, मध्याजी भाव, अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। तो वहां कोई बताने वाला भी नहीं है कि विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो, क्या है विष्णु चतुर्भुज स्वरूप उनको पता ही नहीं है। मुझे याद करो कृष्ण कह ही नहीं सकता, वहां ऑटोमेटिक जिनका जिनका उनके साथ संबंध है कृष्ण के साथ, चाहे वो परिवार के सदस्य हैं, चाहे आस पड़ोस मित्र संबंधी हैं, उनमें प्यार है, वो एक दूसरे का कहना मान रहे हैं। जब बच्चे एक दूसरे का बच्चे कहना नहीं मानते तो उनको कहा जाता है ना, वही मेरा कहना मानो, जब बच्चे कहना मान रहे हो तो उनको क्या कहेंगे, भाई तुम बच्चे मेरा कहना मानो, ना माने तो कहेंगे ना मानो, और जब कहना मान रहे हैं फिर क्या जरूरत है उनको कहने की, भाई तुम मेरा कहना मानो, कहेगा कोई माँ बाप? कोई नहीं। मुझे याद करो, मेरा कहना मानो, वो तो वैकुंठ में ठहरा, वो कह ही नहीं सकते, ना मनमना भाव कह सकते, ना मध्याजी भाव कह सकते, ना मुझे याद करो कह सकते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं बच्चे, ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के, ये सारे शास्त्र किसके हैं, भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है, जो दुनिया वाली गीता है वो भी उन सब शास्त्रों में आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है, वास्तव में तो यह सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है श्रीमत् सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, परंतु कौन सी गीता ये वो नहीं जानते, ये वो नहीं जानते। यानी सबसे उत्तम ठहरी, सभी से उत्तम है शिव बाबा, श्री श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सत्य, क्योंकि श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्या है, सत्य। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ श्री कृष्ण कहेंगे, श्री नारायण कहेंगे, श्री लक्ष्मी कहेंगे, श्री श्री नहीं।
दो बार नहीं जाना, दो बार बाबा।
श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ, सिर्फ कौन है, एक शिव बाबा। श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम भी नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाता है, जो सबसे श्रेष्ठ है वही आकर श्रेष्ठ बनाता है, सबसे श्रेष्ठ नहीं बनाता। सबसे श्रेष्ठ तो एक ही होता है, सबसे श्रेष्ठ तो दो नहीं हो सकते, परम एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। श्री श्री अर्थात सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का नाम बाला है, श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे, जो श्रेष्ठ हैं वो देवी देवताएं हैं, और देवताओं से श्रेष्ठ फिर परम पिता परम आत्मा शिव बाबा है। श्रेष्ठ जरूर देवी देवताओं को कहेंगे जो अभी नहीं है, अब कोई भी देवी देवता यहां पर नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं, सभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, ये हमसे श्रेष्ठ हैं जी, ये हमारे इलाके के लीडर हैं, कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनका करैक्टर तो श्रेष्ठ है ही नहीं। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते, अब भी तुमको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है, परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परम पिता परम आत्मा, फिर है उनकी रचना, फिर है उनकी रचना। ऊंचे ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ध्यान देना है। फिर रचना में सबसे ऊंचा है शिव बाबा, फिर अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर रचना में ऊंचे से ऊंचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ये बीच में कहां से आ गए ऊंचे से ऊंचे, शिव बाबा के बाद, क्योंकि ये तीनों शिव बाबा के सिर्फ संकल्प हैं। ये सिर्फ शिव बाबा के क्या हैं? संकल्प को भी रचना कहा जाता है ना। संकल्प भी मैं जैसे रचूं, तो परम पिता परमात्मा के संकल्प होने के कारण ये ऊंचे से ऊंचा संकल्प है। कैसे ये ऊंचे से ऊंचे संकल्प है? क्या है ये संकल्प? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है?
संकल्प लेने की क्या जरूरत पड़ी?
ये भी बात ठीक है। शिव बाबा को संकल्प लेने की जरूरत क्या पड़ी? यदि वो संकल्प नहीं लेता तो वो परम धाम से बाहर नहीं आता। संकल्प के कारण ही वो परम धाम से बाहर आता है, नंबर एक बात। दूसरी बात यह आती है कि सारी दुनिया में उस परमात्मा रूपी आत्मा, परमात्मा कहो या आत्मा कहो, का भी पार्ट है कि वो एक्चुअल टाइम पर आए इस सृष्टि को पावन बनाना, ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ बनाना, श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया की स्थापना करना, ये काम
परमात्मा के आधार पर सारी चीजें हैं, तो संकल्प की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। वो तो ड्रामा में है, वो ही कर रहा है बाबा जी।
हाँ, तो संकल्प ही तो कर रहा है, ड्रामा में उसको संकल्प करना है तभी तो संकल्प करेगा ना। यदि उसका रोल ना हो ड्रामा में तो वो संकल्प क्यों करे? आपके मन में ये क्वेश्चन उठा, क्यों उठा? क्योंकि ये बात थोड़ी और अच्छी तरह चर्चा करके सबको समझ में आए, आपको भी समझ में आए और आपके बहाने सबको भी समझ में आए, तो ये प्रश्न उठना क्यों? क्योंकि परमात्मा का भी पार्ट है वो एक्यूरेट टाइम पर ये संकल्प करे कि मुझे सृष्टि परिवर्तन के लिए नीचे जाना है। दुनिया एकदम तमो प्रधान बन गई है, उसे पावन बनाना है और वो ब्रह्मा द्वारा ही कार्य हो सकता है। ये ब्रह्मा तो भक्ति मार्ग वालों के लिए है, बाकी संकल्प तो रचना का है कि पतित रचना को, गिरती हुई सृष्टि को मैंने अब चढ़ती कला में करना है। ये है परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ संस्कार। अब ये मकान खंडर हो गया है, इसको गिराना है। अब फिर मैंने इस सारी सृष्टि की विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में पालना का भी कार्य कराना है। तो ये तीन कर्तव्यों को मुझे करना है। ये तीन कर्तव्य, ये तीन संकल्प हैं परमात्मा के, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प है, क्योंकि इसमें सारे विश्व का कल्याण समाया हुआ है। सारे विश्व का कल्याण समाया हुआ है, ये संकल्प है वो रचना। यहां भी नंबर वार मर्तबे हैं, ऊंचे से ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन मिनिस्टर, बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। जब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई, ये परमात्मा रचता है, फिर सृष्टि कैसे रची? परमात्मा जब रचयिता है तो उसने कैसे रचा? इसलिए ये जरूरी कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। क्या कहना पड़ता है?
त्रिमूर्ति शिव रचयिता।
ये त्रिमूर्ति क्यों लगा दिया शिव के साथ? हाँ जी, तीन कर्तव्य हैं, तीन संकल्प हैं, किसके? शिव बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने आप में कुछ नहीं है, सूक्ष्म वतन कुछ नहीं है। वहां कोई ना तो ऐसा ब्रह्मा बैठा है, ना विष्णु बैठा है, ना शंकर बैठा है। ये केवल परमात्मा का परम धाम से बाहर निकलना, क्योंकि ये संकल्प आया तो परम धाम में तो संकल्प आ नहीं सकता, जिसके कारण परमात्मा बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने का मतलब कोई ये नहीं कि कमरे में से बाहर आ गया आप संकल्प करूं, अंदर तो मैं बीड़ी नहीं पी सकता हूं, बाहर आके मैं पी लूं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ संकल्प आना माना परम अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में आना और सूक्ष्म अवस्था से देह में आना, ये भी संकल्प है। तो संकल्प के आधार पर वो देह का आधार लेते हैं और अपने जो संकल्प हैं वो सब आत्माओं तक पहुंचाते हैं।
आत्मा तीन और ले
भाई, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, ये फिर इनके अलग अलग क्यों खोल
दिए? ये जो है ना, हमारे अंधेरे में भटक रहे भगत बच्चों ने कहानियां लिख दी कि ब्रह्मा कौन था, ब्रह्मा कैसे बना, ब्रह्मा ने क्या क्या किया, ब्रह्मा की कहानियां घड़ दी उन्होंने बैठ करके। जैसे रामायण लिख दिया ऐसे ब्रह्मा पुराण लिख दिया, इसी प्रकार से विष्णु पुराण लिख दिया, इसी प्रकार से गरुड़ पुराण लिख दिया, इसी प्रकार से शिव पुराण लिख दिया। दुनिया भर के पुराण उठा के रख, पुराण माना कहानियां। बस ये है कि रामायण ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, महाभारत थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, गरुड़ पुराण, ये गरुड़ पुराण भी काफी फेमस है, पर तो मैक्सिमम लोग उसको पढ़ते नहीं है। सिर्फ कोई मर जाए तो समझते उस टाइम इसको पढ़ना चाहिए, बाकी टाइम पढ़ के क्यों अपना दिमाग खराब करो, इसमें तो एम ही फालतू फंड का जो है ना ड्रा रखा है, लूटने का धंधा है उसमें, लूटने का धंधा ज्यादा है। इसलिए पंडित जो है ना लास्ट में अच्छी तरह सुनाता है कि देखो नहीं करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो आपको दुख देगा, आकर के ये करेगा वो करेगा। चलो हम वापिस आइए। पुराण इसीलिए, और ये पुराण तो मुझे ये देख करके भी बड़ी अच्छी बात लगी कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद के गुरु व्रजानंद ने कितनी बड़ी लाइन स्वामी दयानंद को कहा कि ये वेद सत्य हैं परंतु ये पुराण असत्य है। मतलब ये बात
वेद सत्य है पुराण असत्य है।
हाँ, ये बात व्रजानंद ने कही थे और उसको लेकर के ही सत्य स्वामी दयानंद चला था, परंतु वो भी पुराणों के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा सका, क्योंकि पुराणों का इस दुनिया में इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है, इतना बड़ा जो भव्य राम मंदिर बन रहा है ये पुराणों की देन है। तो ये सारी बातें अंत समय तक होनी है। अब इनको किसी के दिमाग से निकालना इतना सहज
नहीं
निकलेगा, सबका निकलेगा, सबको समझ में आएगा, परंतु तब तक समय नहीं होगा कि आगे वो कुछ और परिवर्तन कर सके। वास्तव में रचयिता की बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। परमात्मा को बाबा कहते मैं रचयिता नहीं हूं, मैं रचवाने वाला हूं, ये कहना ठीक है। मैं खुद तो कुछ करता नहीं, मैं तो करवाता हूं, तो मुझे रचवाने वाला कहना ठीक है। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा रचयिता है, इसलिए परमात्मा एक एक छोटी छोटी बात को समझा रहा है। अब आज कह दिया मैं रचयिता हूं, समझा दिया रचवाने वाला कहना ठीक है, पर तो कल फिर आएगा रचयिता तो कह के देखा आज बाबा ने कह दिया रचयिता। अरे भाई, वो भक्तों को नई नई बातें, अब सारी बातें एक दिन तो नहीं बताएगा ना, एक बार हाँ, अब जो बात समझ में आ गई उसे याद रखना तो मेरा काम है। अब ये चैप्टर तो रिपीट होगा, रिवाइज होगा, आगे पीछे होगा, इसलिए जहां तक हम पहुंच गए वो बात हम अपनी बुद्धि में सदा याद रखें। अब हमने उससे नीचे नहीं आना, फिर कभी भी चाहे परमात्मा कहता रहे कि मैं रचयिता हूं, हमने उस समय याद रखना है कि कह रहा है रचयिता हूं, परंतु ये रचयिता नहीं है, ये रचवाने वाला है। जिसको मैं कई बार कह देता हूं कि बाबा झूठ बोल देता है, मतलब बाबा क्या करे, बाबा ने तो जिस समय जो समझाना था वो समझाया, परंतु उसके बाद फिर पुरानी बात हम रिपीट कर रहे हैं, पहली क्लास वाली बात को रिपीट करें दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, पांचवी क्लास में, तो वो बात जो है ना हमें याद रखना चाहिए कि उस बात से हम अब पांचवी क्लास में आ गए हैं, हमें पहली क्लास वाली बात को उसी प्रकार से समझना है कि वो पहली क्लास की बात है। ब्रह्मा द्वारा देवी कुल की स्थापना कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? देवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वे हैं आसुरी संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार भी समझाते हैं, मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते हैं मैं आकर भारत की ये सर्विस कर रहा हूँ, तुम ये बर्थ कंट्रोल की चिंता क्यों करते हो, मेरा परिवार है, मैं इसे कंट्रोल करूंगा, मैं इसे कंट्रोल करूंगा। ये तो है तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, क्योंकि जिस समय मुरली चले उस समय यही होता था, 10-10, 15-15, 20-20 जितने बच्चे हो रहे, भगवान की देन है जी, हम क्या करें। ये तो संजय ने आके बताया कि नसबंदी हो जाती है, फिर करो भगवान की देन कैसे होती है, पकड़ पकड़ के जो बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय जो है ना संजय ने आके नसबंदी कर दी, वरना हम भी 8 की कितने हो गए होते, हम 8 भाई बहन हुए, नहीं तो कितने हो गए। तो रास्ते में रास्ते में बस से उतारा और नसबंदी करके और एक घी का टिन पकड़ा के घर भेज दिया, जाओ भैया, जबरदस्ती था वो, खेतों में भागती थी दुनिया। नहीं वो तो भाग रहे, स्कूलों में तो बच्चों का भागना होता था कि वो चेचक का टीका लगाने आए, बसों को रोक कर करते थे। हाँ बिल्कुल, वहीं के वहीं पर ही जो है ना, मतलब कहने का मतलब कि भगवान की देन है। तो ये सारी बात आती है कि देखो मैं 10वीं पास कर चुका हूँ, उसके बाद भी छोटा वाला भाई पैदा हो रहा है, और मैं जब वापस जाता हूँ तो देखता हूँ कि छोटा भाई पैदा हो गया। ठीक, मतलब कहने का ये है कि खैर पार्ट है, मतलब उस समय का। तो बाबा कहते 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर ना सके। जितने बच्चों ने जन्म लेना है ना लेंगे, ठीक नहीं, और कोई कंट्रोल कर ना सके। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्चे, बिना किसी प्रकार के ऑपरेशन के, संकल्प ही नहीं करते, क्योंकि संकल्प ही, संकल्प पर इतना कंट्रोल होता है कि संकल्प ही वो करेंगे जो होना है। हाँ जी, हाँ भाई, सबके वरना बैलेंस कैसे बनेगा। हाँ, हर एक के पास एक बच्चा एक बच्ची। अब कई बार बाबा मुरली में कह देते हैं कि वहां तो एक ही बच्चा होगा, तो ठीक कहा है ना, एक बच्चा होगा का मतलब ये नहीं कि लड़की या लड़का एक होगा, नहीं, जब बाबा कहते हैं एक बच्चा होगा, सबके पास एक ही लड़का होगा और एक लड़की होगी, पर बात वही है, बैलेंस तो बनाना है ना, बराबर चाहिए ना, तभी तो वहां बैलेंस रहता है कि भाई सब एक लड़का भी करेंगे और एक लड़की भी करेंगे, एक ही दो संकल्प करेंगे, ये नहीं कि लड़का कर लिया लड़की नहीं करनी।
काफी सुधार हो गया, अभी लोग समझने लगे।
अब जिन्होंने समझना था वो समझ रहे हैं, जिन्होंने नहीं समझना था वो नहीं समझ रहे हैं, उनका क्या कर सकते हो, तो उनका पार्ट है, उन्होंने जितने बच्चे जन्म लिए हैं वो जन्म ने है ही है। हाँ, ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, कोई रोक नहीं सकता, ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। मतलब कितने हैं जो मतलब नहीं चाहते, हो जाता है, अब हो गया तो क्या करे, कहते अब क्या करे, इसको मारे, पाप करे कि ना करे। कितने फोन आते हैं जी हमारे से पाप हो गया, अब क्या करे, पाप हो गया, अब हमने मार दिया, ये कर दिया, बोला अनेक प्रकार की बातें समाज में। हाँ, अब क्या है ना कि वो गलतियां भी उनसे होनी है, पर सब कुछ होना है, ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है अति इंद्रिय सुख, पूछ ना हो तो किससे पूछो, गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। यहां बाकी दुनिया वाले गोप गोपियां नहीं, गोपी वल्लभ जो आत्माओं का बाप है उनकी गोप गोपियों से पूछना है। बाहर वाले गोप गोपियां नहीं पकड़ लेने। जब तुम सन्मुख सुनाते हो सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधा धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, त्रिकालदर्शी को सुदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। देखिए कितने शब्द अलग अलग हैं। एक शब्द है त्रिकालदर्शी, दूसरा शब्द है सुदर्शन चक्रधारी, तो दोनों दोनों का एक संबंध कैसे हो गया? क्योंकि सुदर्शन चक्र फिरा ही हो सकता है जो तीनों कालों को जानता है। जब वो इन तीनों कालों को याद रखता है तभी उसे याद रहता है कि अब मुझे परिवर्तन करके इस श्रेष्ठ स्टेज पर जाना है, और तभी वो अपनी बुराइयों का गला काटता है। तुम कहते हो वैकुंठ नाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज थी कि नहीं थी? श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी था कि नहीं था? तो इतनी देर सोचने में लगा दिया। हाँ जी,
तीनों कालों को जानने वाला
था, सारी पढ़ाई का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कहेंगे क्या मुरली सुनते हैं भाई, श्री कृष्ण को कैसे याद होगा तीनों कालों का? भाई उसकी आत्मा को याद है, 84 जन्म है, जब वो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेगा तो उसे कुछ भी नहीं मालूम, तो श्री कृष्ण तो वैकुंठ में होगा। आपको श्री कृष्ण थोड़ा कहेंगे उसको, जन्म ले लिया तो जन्म लेने के बाद उसे नहीं मालूम। श्री कृष्ण जन्म ले लिया, जब उसका नाम श्री कृष्ण रख दिया तो उसे नहीं मालूम कि सत्युग का क्या होता है, त्रेता क्या होता है, द्वापर क्या होता है। अरे भाई मेरे, आत्मा पढ़ रही है, आत्मा जब तक श्री कृष्ण नहीं बनी है तब तक पढ़ रही है ना। जब श्री कृष्ण बन गई तो पढ़ने थोड़ा आएगी, तो वैकुंठ कहाँ है भाई मेरे? जिस समय मतलब एडवांस पार्टी के बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब जब तक वो जहाँ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज में है तब तक उसे याद है, परंतु तो जैसे ही वो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेगा,
साधु संत के उसमें नहीं है, आश्रम में।
क्यों?
सिर्फ ब्रह्म कुमारी नहीं आएगा श्री कृष्ण,
और क्या? साधु संत महात्मा है तो बेचारे द्वापुर में आने वाले हैं, उनको तो कृष्ण का पता ही नहीं है ना।
संगम के ऊपर तो समझिए ना, संगम पर तो, संगम से ही तो उसको प्राप्ति होगी।
मेरे भाई संगम पर सभी हैं, परंतु उन्होंने कृष्ण को जन्म देना, कृष्ण के साथ रहना उनका पार्ट नहीं है, ठीक है? उनका पार्ट नहीं है, पार्ट के अनुसार ही तो आएंगे ना। तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी उनको। श्री कृष्ण तो सभी का प्यारा है, सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य ना समझने कारण कह देते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, इसलिए तुम नास्तिक हो। फिर विघ्न डालते हैं, अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं, बांधेलियां कितना सहन करती हैं, तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है। विघ्न पड़ गया फिर ये ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, हम ऐसे नहीं कह सकते, ड्रामा अनुसार ये किया, कल्प पहले भी किया था तब भी तकलीफ हुई थी, पुरानी शरीर की चतिया तो भी चतिया भी लगानी है, अंत तक मरम्मत होती रहेगी, ये भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही, ताकत ना होने कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं, माया कमजोर को बहुत दुख देगी, हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है, हम बहुत ताकत वाले थे फिर माया ने क्या कर दिया, कमजोर बना दिया। अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया है, जो बिल्कुल सौकार था उनको बहुत बेगर बनना है। फिर बेगर से क्या बनेंगे? प्रेस बनेंगे। बाबा कहते इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो तुमको बहुत बैगर बनना पड़े। युक्तियां भी बताते रहते हैं, जनक का मिसाल ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना, जो कुछ आपके पास है सब किसको दे देना है, तन मन धन शिव बाबा को। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो। जनक को, जनक से क्या ले लिया? सब कुछ ले लिया, फिर उसको कहा कि ये मिल्कियत तुम संभालो और अब रहो ऐसे न्यारे। फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी हो करो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है, बाप समझाते हैं बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाए। बीज बोना माना अपना तन मन धन यज्ञ में स्वाहा करना। जो जितना धन का बीज बोएगा, तन का बीज बोएगा, मन का बीज बोएगा, उतना तो उसको मिलेगा। जितनी सेवा करेगा उतना ही तो उसको मिलेगा। तुम्हारे सामने ये दादा बैठा है, तुम्हारे सामने कौन बैठा है? दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। अपना तन मन धन शिव बाबा को और शिव शक्तियों के आगे क्या कर दिया? समर्पण, मेरा कुछ भी नहीं। अब शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, ये अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा, इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए, लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी को नहीं दिया। इस समय यह है जगत अम्बा सतयुग में होगी लक्ष्मी। जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। वे सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहां से मिलता है? कृष्ण क्या ब्रह्मा से? लक्ष्मी को धन कहां से मिलता है? क्या ब्रह्मा से, क्या कृष्ण से? नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। ये बड़ी गुप्त बातें हैं ना, भगवानों वाच है, सबके लिए भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं माम एकम याद करो। बल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वे हुई भक्ति, अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलवेड फादर श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। भल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि ये सतयुग का प्रथम राजकुमार है, ये उनको कभी ख्याल नहीं। सतयुग का प्रिंस कैसे बना आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर, हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। फिर से क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को वरेंगे ना। ये नॉलेज है ही भविष्य के लिए, ये नॉलेज है ही भविष्य के लिए। इसका फल 21 जन्मों के लिए मिलता है। इसका फल क्या मिलता है? 21 जन्मों के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि ये वर्षा देते हैं, कृष्ण तो खुद वर्षा ले रहा है, वो देगा कैसे? वर्षा बाप से मिलता है। शिव बाबा राज योग सिखलाते हैं, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ही ये शिक्षा मिलती है, सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वे सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं, ये बातें कहीं है नहीं। ये नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। लॉ नहीं कहता, नियम नहीं कहता, इतना पद भी नहीं पा सकेंगे, थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे, स्वर्ग में तो। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे, मेरे पास आ नहीं सकेंगे। बल घर भी बैठे स्वर्ग में आ सकते हैं, घर बैठे भी कहां आ सकते हैं, स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जब कि योग में रहें, पवित्र रहें। पवित्रता बिगर योग लगेगा ही नहीं। आत्मा समझा नहीं आप कभी योग नहीं लगा सकते। जब आत्मा समझेंगे तभी परमात्मा की श्रीमत पर चल सकेंगे। जब तक देह समझेंगे तब तक आप श्रीमत पर सच्चे दिल पर। साहेब राजी होगा जो विकार में जाते रहते हैं, कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूं, ये तो अपने दिल खुश करता रहता है। मुख्य है पवित्रता। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा कम मत करो, ये तो है तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, तुम हो सभी कुमार और कुमारियां। तो विकार की बात नहीं, यहां तो विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है, विष के लिए कितना मार खाती हैं, कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है, यहां ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी, धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई की रीति से पीता है, कोई ने हाथ नहीं उठाया, ये सच जरूर बोलना है, ये सच, यहां सच जरूर बोलना है। सच भी भूल जाता है, भूल होती है, सच भी भूल होती है, तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से ये भूल हुई। माया ने थप्पड़ मार दिया, भूल हुई, माया ने क्या किया, थप्पड़ मार दिया बाबा को। तो बहुत लिखते भी हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, क्रोध ने थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, दिखलाते हैं कृष्ण की ओको ओखरी से बांधा, ये तो सब झूठी बातें। कृष्ण को ओखली से बांधना है क्या है, झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए, भोजन बंद करना, मिठाई ना देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है, सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए कि हमने ये विकर्म किया। कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो बाद में सोचना पड़े, ओहो ये तो मेरे से गलत हो गया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करो, हम भविष्य में नहीं करेंगे। आगे नहीं करेंगे, तोबा तोबा करते हैं ना, वहां भी धर्मराज सजा देते हैं तो तोबा तोबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कोड़ी कोड़ी हीरे समान है, कोड़ी कोड़ी भी क्या है, हीरे समान है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं, मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है, कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा, यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है, बेहद की आयु मिलती है, इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं, काम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है, कलयुग की आयु सबसे कम होती है, 30 वर्ष की एवरेज आयु हो जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते क्या करना है, अर्थात बाबा की श्री मत के अनुसार ही चलना बैठना उठना काम करना है, तब ही खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं, सब कहें हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएं, ये भी कायदा नहीं है। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा निकालते हैं, बाबा कहते अच्छा तुम गरीब हो कुछ भी नहीं निकालो, नहीं है मत दो, नॉलेज को तो समझो, मन मना भव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, कुछ लेके आई थी, खाली हाथ आई थी, फिर भी वो ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे आदि का बात नहीं, बहुत बहुत करके एक रुपया दे देना, तुम्हें सौकार जितना मिल जाएगा, बहुत करके तुम नहीं दे सकते हो, टेंशन नहीं लेना, आप एक रुपया दे देना ठीक है नहीं, तो तुम्हें सौकार जितना मिल जाएगा, सौकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है, पहले किसकी संभाल करनी है, अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है, बच्ची दुखी बच्चे दुखी ना हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की नहीं, आज तो बाबा बदल गया, वंदे मातरम, सलाम अलैकुम, जय 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 हो तेरी, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके पीछे ख्याल चले, तोबा तोबा, पश्चाताप करना पड़े, हाय ऐसा क्यों किया, झूठ नहीं बोलना, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कोड़ी सफल करनी है, ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित भाव, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी भी चित के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ये ऐसा क्यों करता है, वह क्यों कहता है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन रचना रच लेते हैं, तो उन्हें फिर अपने संकल्पों की, अपने प्रश्नों की पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। बर्थ कंट्रोल किसका करना है? व्यर्थ रचना का करना है, बच्चों का नहीं। स्लोगन, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो। अपनी नैनों में किसको समाओ? बिंदु रूप बाप को संभालो। और यथार्थ कोई समा नहीं सकते, तुम बिंदु रूप बाप को समा सकते हो परंतु और कोई समा नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।